ही जो हमने आयात पढ़ी है ये सूरह कहफ की आयात नंबर 92 से लेकर 100 तक है, ठीक है, 92 टू 100 आयात है। और इनका तर्जुमा क्विकली पढ़ के हम अब तफसीर पढ़ना शुरू करेंगे इनकी। कि इसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि जो ज़ुल्करनैन के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, विच वॉज द फोर्थ स्टोरी फिफ्थ स्टोरी इन सूरह कहफ। सूरह कहफ के अंदर जो पांच स्टोरीज हैं तो उनमें से ये पांचवीं स्टोरी है ज़ुल्करनैन के बारे में। तो उनके बारे में अल्लाह ताला हमें बता रहे थे कि तुम अतबा सबबा के वो फिर एक नए रास्ते के ऊपर चलना शुरू हुए, क्योंकि पहले वो कहाँ गए थे, फार ईस्ट फार वेस्ट में गए थे, बिल्कुल मगरिब के आखिरी किनारे तक चले गए थे, ठीक है, जहाँ पे कि सूरज उनको गुरूब होता हुआ नजर आया था पानी के अंदर। अच्छा, घर में बच्चों से बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया कि ये जो अटलांटिक ओशन है ना, तो अटलांटिक ओशन पे जब हम ट्रैवल करते हैं जहाज से जाते हैं ना, तो हमें नज़र आता है कि ओशन जो है वो तो बहुत दूर जाके शुरू होता है, ठीक है, जो एक्चुअल समंदर है ओशन है वो दूर जाके शुरू होता है, उससे पहले एक बहुत लंबा एरिया ऐसा आता है कि जहाँ पर के थोड़ा पानी होता है और बाकी वहाँ पर वेजिटेशन होती है, यानी ग्रीनरी होती है, ठीक है, तो झाड़ियाँ होती हैं और पौधे उगे हुए होते हैं, घास उगी हुई होती है, और साथ साथ जो होता है वो पानी भी होता है। तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पर फिर कीचड़ होती है, ठीक है ना, बिकॉज वहाँ पे मिट्टी होती है और पानी होता है, ठीक है, मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर ही तो फिर वो घास उगती है ना और झाड़ियाँ उगती हैं, तो वो मिट्टी भी होती है और पानी भी होता है, तो मिट्टी और पानी मिक्स होकर के ना वो कीचड़ बन जाती है, ठीक है। तो ये कीचड़ जो होती है ये बहुत दूर तक ही कीचड़ चलती है, और जब वो ख़त्म होती है ना फिर उसके बाद ओशन शुरू होता है। तो जैसे कुरान ने कहा है ना कि इनको जो वो सूरज ग्रूप होता हुआ नज़र आया था, तो वो इस काली मडी एरिया के अंदर ग्रूप होता हुआ नज़र आया था, तो उसकी वजह भी यही थी क्योंकि ओशन तो बहुत बाद में जाकर शुरू होता है, शुरू में तो कीचड़ होती है, तो उनको ना कीचड़ ही नज़र आ रही थी, उसी के अंदर जो है वो सूरज ग्रूप होता हुआ नज़र आ रहा था। बहरहाल तो फार वेस्ट में गए वो, और फिर वहां से वापस आकर के फार ईस्ट में गए जहां पे कि सूरज ट्रू हो रहा था, ठीक है, और वहां पे एक ऐसी कौम थी कि जिसके जिसके और सूरज के दरमियान कोई कोई रुकावट नहीं थी, कोई छत नहीं थी, कोई आड़ नहीं थी। फिर उसके बाद फार ईस्ट के बाद वो कहाँ गए, नॉर्थ गए कि साउथ गए, शुमाल में गए कि जुनूब में गए, किसी को याद है? नॉर्थ में गए फिर वहां से, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ गए और वहां जाकर के उनको एक जगह नजर आई, जगह मिली जहां पर के दो बड़ी बड़ी कुछ पहाड़ टाइप की चीजें थी, ऑब्वियसली पहाड़ ही होगा और क्या चीज हो सकती है, तो कोई ऐसी रुकावटें थी कि जिनके दरमियान एक पैसेज वे था, ठीक है ना, दो बड़े बड़े पहाड़ होंगे और उन पहाड़ों के बीच में एक पैसेज वे होगा, एक रास्ता होगा, उस रास्ते में यानी उस जगह पर उस रास्ते में एक कौम रहती थी, लोग रहते थे, ठीक है ना, और उन लोगों को कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं आती थी कि जिस लैंग्वेज में वो ज़ुल्करनैन और उनके लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। तो उन्होंने फिर साइन लैंग्वेज से ज़ुल्करनैन को बताया कि इस पहाड़ के पीछे जो है ना वो एक कौम रहती है जिनको याजूज और माजूज कहते हैं, और ये कौम जो है वो हर थोड़े दिन के बाद हमारे पास हमारी तरफ आती है और हमें आकर के ना वो मारना शुरू कर देती है और हमारी चीजों को लूट लेती है, तो आपको हम कुछ पैसे देंगे, ठीक है, आपको हम कुछ पैसे देंगे, आप उन पैसों को लेकर के हमारे और उन लोगों के दरमियान, याजूज और माजूज के दरमियान एक दीवार बना दें, कोई ऐसी चीज बना दें कि वो लोग हमारे पास आ ना सके और हमें मार ना सके, ठीक है। तो ज़ुल्करनैन ने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत माल पैसा दिया है, ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि तुम जो है मुझे कि तुम मुझे बस फिजिकली हेल्प करो, ठीक है, तुम मेरे यानी काम काज के जरिए से मेरी हेल्प करो। तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग जो है वो मुझे लोहे की स्टील जिसको कहते हैं या आयरन कहें, तो स्टील या आयरन की जो है ना वो मेरे पास शीट्स लेकर के आओ, ठीक है, चादरें आयरन की बनी हुई चादरें इस तरह से लेकर के आओ मेरे पास। तो उन शीट्स को उन्होंने क्या किया कि कि उन्होंने इन दोनों पहाड़ों के दरमियान ना उन शीट्स को रखना शुरू कर दिया, पाइल अप करना शुरू कर दिया। एक शीट रखी, फिर उसके ऊपर दूसरी शीट रखी, फिर तीसरी शीट रखी, चौथी शीट रखी। ठीक है, जैसे कि हम कभी हमारे पास घर में मैट्रेसेस होते हैं तो मैट्रेसेस को एक के ऊपर एक पाइल अप कर देते हैं, तो उस तरह की वो आयरन की शीट्स थी। और उन शीट्स के बीच बीच में ना वो फ्यूल रखते गए, फ्यूल, ईंधन। ठीक है, फ्यूल क्या था उस जमाने का? उस जमाने में पेट्रोल वगैरह तो इस तरह का नहीं होता होगा जो कि अब जमीन से अब डिग करके पेट्रोल निकालते हैं। तो उस जमाने में जो फ्यूल के तौर पे चीज यूज होती थी वो लकड़ी होती थी, लकड़ियां, दरख्तों को काट काट करके लकड़ियां निकालते हैं। तो उन्होंने उन शीट्स के बीच में ना बहुत सारी लकड़ियां भी डालनी शुरू कर दी, और उसके अंदर जो केरोसिन ऑयल टाइप की जो चीजें होती हैं, तेल, जो जलाने वाला तेल होता है, वो भी लोग, हाँ, वो भी उसके ऊपर डाल दी। ठीक है, ऑयल भी उसके ऊपर छिड़क दिया। ठीक है, तो जब वो शीट्स जो है वो इतनी ऊंची हो गई कि वो पूरा पहाड़ों के बीच का जो एरिया था वो पूरा कवर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने उन लकड़ियों को आग लगा दी, उस फ्यूल को, उस ऑयल को आग लगा दी, लकड़ियों ने भी आग पकड़ ली, और आग पकड़ने से वो इतना ज्यादा गर्मी क्रिएट हुई वहां पर, इतनी गर्मी क्रिएट हुई, कितनी गर्मी क्रिएट हुई होगी, मैंने जाकर के चेक किया कि आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। आपको पता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? मैंने लिखा है अपने पास, इट इज 1204 डिग्री सेल्सियस, 1204 डिग्रीज टेम्परेचर जब पहुंचता है ना तब आयरन मेल्ट होना शुरू होता है। रियाज में कितना टेम्परेचर होता है? 46 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। ठीक है ना, और हम बाहर निकलते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, और ऐसा लगता है वी हैव पुट आवर फेसेस इन द ओवन, राइट? जैसे बेकिंग करने के लिए आप केक डालते हैं ना अंदर ओवन के अंदर, तो बेक हो जाता है। तो रियाज में ऐसा लगता है कि जैसे आप अपना मुंह जो है ना वो ओवन के अंदर डाल दिया, इतना वहाँ पर गर्मी होती है यहाँ पर, राइट? पूरी बॉडी डाल दी है, बॉडी में तो फिर भी कपड़े पहने होते हैं लेकिन मुंह क्लियर ओपन होता है ना। खैर, तो आयरन मेल्ट होता है 1200 डिग्रीज के ऊपर, 1200। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब आयरन मेल्ट होना शुरू हो गया तो उस पर उन्होंने एक और काम भी किया कि लोगों से कहा कि तुम मेरे पास मोल्टन कॉपर लेकर के आओ, तित्रा, तित्रा कहते हैं मोल्टन कॉपर को, ठीक है, जिसको उर्दू में हम तांबा कहते हैं। तो उस कॉपर को ला करके ना फिर इन्होंने किसी तरीके से, कोई इनके पास कुछ ना कुछ मशीनरी टाइप की कोई ना कोई चीज होगी, ठीक है ना, कोई लाइक समथिंग लाइक अ कैटापोल्ट, जिससे कि ना वो उन चीजों को ऊपर फेंका जा सकता है, या ऊपर चढ़े होंगे किसी तरीके से और मोल्टन कॉपर को उसके ऊपर डाला होगा। तो मोल्टन कॉपर फिर जो ऊपर से लेकर के नीचे फ्लो हुआ ना, बहा ना, तो बहने के साथ साथ फिर वो टेम्परेचर उसका जो है वो डिक्रीज हो गया, यानी इतना गर्म वो नहीं रहा, तो फिर वो फ्रीज होना शुरू हो गया। फ्रीज होने से क्या हुआ कि जो आयरन मेल्ट हो चुका था, उस मोल्टन आयरन के अंदर जो कुछ भी कोई जगह वगैरह रह गई थी, तो मोल्टन कॉपर ने उस सारी जगह को जो है फिल कर दिया। ठीक है, आपने देखा है जो लोग उस पर गए, वेयर डिड दे गेट द आयरन एंड कॉपर फ्रॉम? दैट आयरन एंड कॉपर मस्ट हैव बीन अवेलेबल वेयर दे लिव्ड। ठीक है, ये यानी इसके लिए भी थोड़ा, यानी ये जो मेटल्स होते हैं, कॉपर है और आयरन है, तो ये सारे के सारे ना लैंड में मौजूद होते हैं, अर्थ के अंदर। तो उसको इन्होंने कहीं से डिग करके ये कॉपर और आयरन वगैरह निकाला हुआ था। जी, नहीं, इसका टेम्परेचर 1200 तो उस वक्त था जब वो आग जल रही थी, फिर वो आग जल जल करके जब उसने मेल्ट कर दिया ना, तो आग खत्म हो गई उसके बाद, तो उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर जो है वो बैक टू नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब तो वो, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप सफा और मरवा पे जाते हैं ना सही करने के लिए, ठीक है, गए होंगे सफा मरवा पे, सऊदी अरब में रहने वाले दूसरे लोग भी उम्रे पे गए होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि इन्होंने क्या किया है, सफा जो जो माउंटेन है ना, तो उस माउंटेन के ऊपर आप देखेंगे कि इट्स वेरी लाइक स्लिपरी। ठीक है, सफा माउंटेन पे तो अब हम चढ़ नहीं सकते, उन्होंने उसको ब्लॉक ऑफ कर दिया है। ठीक है ना, उसके गिर्द एक वॉल बना दी है, वहां पे आप नहीं जा सकते। लेकिन जब आप मरवा पे पहुंचते हैं तो मरवा का जो माउंटेन है ना, उसका छोटा थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा आपको नजर आता है, यू कैन एक्चुअली वॉक ओवर इट, चल सकते हैं आप उसके ऊपर। लेकिन जो आप चलते हैं ना, तो वो जो माउंटेन है उसमें कोई ऐसे पत्थर और ऐसी कोई चीजें नहीं है जो कि आपके पैर को हर्ट कर सके, बल्कि वो बिल्कुल स्लिपरी है। ठीक है ना, वो माउंटेन स्लिपरी है। तो वो स्लिपरी कैसे हो गया? वो ओरिजिनली स्लिपरी नहीं था, ओरिजिनली तो ऐसे ही माउंटेन था जैसे माउंटेन्स होते हैं, उसके अंदर रॉक्स होते हैं और स्टोन्स होते हैं और उसके अंदर जो है वो शार्प एजेस होते हैं जिनके ऊपर आप अगर नंगे पैर चलें तो आपके पैर के अंदर जख्म हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सफा और मरवा माउंटेन्स के ऊपर ना इसी तरीके से मोल्टन कॉपर को डाल दिया। ठीक है, जब मोल्टन कॉपर डाला तो मोल्टन कॉपर जो फ्लो हुआ ना उस माउंटेन के ऊपर, तो फ्लो होने के साथ साथ वो फ्रीज भी हो गया। फ्रीज होने से क्या हुआ कि अब वो पूरा का पूरा माउंटेन जो है ना वो स्लिपरी हो गया है, उसकी सारी शार्प एजेस जो है वो खत्म हो गई है, वो बेरी हो गई है उस मोल्टन कॉपर के अंदर। और अब वो मोल्टन कॉपर जब फ्रीज हो गया तो अब आप आसानी से उसके ऊपर चल सकते हैं, उसके अंदर कोई नोकदार चीजें शार्प एजेस उसके ऊपर नहीं रही हैं। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह की चीज लगती है कि ये वॉल के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, मोल्टन कॉपर जो है वो फिर फ्रीज हो गया होगा और अब वो वॉल जो है बिल्कुल चिकनी स्लिपरी हो गई। ठीक है, अब चिकनी स्लिपरी हो गई तो ये तो बिल्कुल ऐसी ऊंची सी एक वॉल थी ना, तो ऐसी स्लिपरी वॉल के ऊपर आप कोई चढ़ नहीं सकता, आपकी चीज को पकड़ के ग्रैब करके ऊपर नहीं जा सकते। तो ये जो उन्होंने वॉल बना दी तो इसके बारे में फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया, आयत नंबर 98 में, फमस्ताउ अन यज़हरूहु कि दे वर नॉट एबल टू क्लाइंब इट, स्केल इट। अब वो उस वॉल के ऊपर चढ़ नहीं सकते थे, वमस्ताउ लहू नक़बा, और ना वो उस वॉल के अंदर कोई होल बना सकते थे। नक़ब कहते हैं होल बनाने को, ठीक है ना, उसको डिग करके उसके अंदर कोई होल बना लेना। इतनी वो स्ट्रॉन्ग थी, इट वॉज मेड ऑफ आयरन एंड कॉपर ऑन टॉप ऑफ, तो दो हार्ड मेटल्स उसके अंदर थे, तो अब वो उसके अंदर होल नहीं बना सकते थे। दूसरा एक बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है मेरे पास थोड़ी देर में। तो जी बहुत अच्छा सवाल है, तो इस वजह से ना ये इट्स क्वाइट पॉसिबल कि या तो जो माउंटेन्स थे ना दोनों साइड्स पर, दे वर नॉट क्लाइंबेबल, वो क्लाइंब नहीं कर सकते, तो क्योंकि अभी हर माउंटेन को आप क्लाइंब नहीं कर सकते। सम माउंटेन्स आर लाइक बिल्कुल फ्लैट होते हैं एक तरफ से, ठीक है ना, फ्लैट माउंटेन के ऊपर अब आप क्लाइंब नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से या तो वो माउंटेन्स ऐसे हैं कि फ्लैट हैं तो वो उधर से क्लाइंब नहीं कर सकते, या ये कि मे बी दे वर नॉट इवन माउंटेन, बिकॉज कुरान के अंदर जो वर्ड्स हैं वो तो सद के वर्ड है ना, सद डज नॉट नेसेसरली मीन माउंटेन, इट कैन मीन सम अदर फॉर्म ऑफ पार्टीशन और वॉल और समथिंग, या ना पता नहीं अब क्या होगा वो, वी डोंट नो एग्जैक्टली, बिकॉज़ वी नॉट वैली, इट हैज टू बी समथिंग टॉल, समथिंग वेरी टॉल। ठीक है, और उन दोनों के दरमियान उन्होंने फिर वॉल बना दी थी, तो most probably mountain ही होगा जो कि क्लाइंब नहीं कर सकते आप उस तरफ से। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ वॉल बना दी और अब वो वॉल को भी क्लाइंब नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि ताला हादा रहमतुम मिन रब्बी, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़ुल्कर्नैन ने ये कहा कि ये मैंने जो किया ना, आई वॉज एबल टू अकॉम्प्लिश सच अ टास्क, अल्लाह की रहमत से मैंने किया, अल्लाह ताला ने मुझे मदद करी, अल्लाह ताला ने मुझे आइडियाज दिए कि भाई पहले स्टील लेकर के आओ, उसको पहले तुम मेल्ट करो, फिर उसके बाद कॉपर लेकर के आओ, कॉपर को मेल्ट करो, तो ये सारे आइडियाज जो है मुझे किसने दिए, अल्लाह ताला ने दिए। वो तो अभी हम आगे, हाँ वो आगे पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला की तौफीक से ही मैंने सारा काम किया। तो इससे हमें क्या चीज, हमें लेसन क्या मिलता है कि जो भी हम दुनिया के अंदर करते हैं ना, एनीथिंग गुड दैट वी डू वी हैव टू एसोसिएट दैट टू अल्लाह, कि अल्लाह की तौफीक से मैंने अच्छा काम किया। ठीक है, देखिए कितने बड़े किंग थे, कितनी इनके पास पावर थी, कितने इनके पास इंटेलिजेंट होंगे ये, और कुछ किसी चीज की इनके पास कमी नहीं थी, लेकिन ही वुड ऑलवेज रिमेंबर अल्लाह, ही वुड नॉट फॉरगेट अल्लाह, ये देखो मैंने देखो कितना अच्छा काम किया, नहीं, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह ने मुझे आइडियाज दिए, इसकी वजह से मैंने अच्छा काम किया। तो ये खासियत होती है नेक लोगों की कि वो अल्लाह ताला कभी भी नहीं भूलते। फिर उसके बाद फैजा जा वादू रब्बी जालो दक्का, तो अल्लाह ताला का यानी मेरे रब का जब वादा आ जाएगा तो ये जो वॉल है ये क्रैश हो जाएगी, और ये बिल्कुल लेवल हो जाएगी, जमीन जैसी हो जाएगी, ठीक है। वकान वादु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा हक है, सच है, यानी वो हो करके रहेगा। अच्छा, आपने लिखा बट दे डू ब्रेक ए पार्ट ऑफ इट ईच डे, नहीं ऐसा तो नहीं है कि दे डू ब्रेक अ पार्ट ऑफ इट ईच डे, ठीक है, वो ब्रेक अ पार्ट ऑफ इट वाला मसला नहीं है, बल्कि उसमें काफ़ी तफसील है, वो हम मे बी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने जो इस बुक से पढ़ना है ना, वो है कॉमेंटरी ऑन पेज नंबर 657, जिसका टाइटल है कि द आइडेंटिटी ऑफ याजूज माजूज एंड द लोकेशन ऑफ द वॉल ऑफ ज़ुल्करनैन, ठीक है। इसके बारे में चंद चीज़ें, फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर एक हदीस है, बहुत डिटेल्ड हदीस, तो इसको पढ़ रहे हैं, जिनके पास बुक है वो उसको फॉलो करें, जिनके पास नहीं है उनको हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, कि अ लॉट ऑफ एब्सर्ड एंड स्ट्रेंज थिंग्स डिसेमिनेटेड थ्रू इसराइली नैरेटिव्स एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज आर फाउंड करेंसी टू द एक्सटेंट दैट सम कमेंटेटर्स हैव रिपोर्टेड देम इन टर्म्स ऑफ द हिस्टोरिकल सोर्सेस दो दे देमसेल्व्स डज नॉट फाइंड देम ट्रस्टवर्दी, दैट इसको छोड़ दें। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो है ना याजूज माजूज के बारे में मशहूर हो गई हैं, विच आर नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये लोगों ने अपनी तरफ से कुछ बना दी है, किसी ने कोई बात कही होगी, शुरू में ऐसा होता है कि थोड़ा सा जो बात करते हैं ना तो वो सही होती है, सच होती है, लेकिन जब वो दूसरे लोग सुनते हैं तो अब उनको ना वो बात पूरी समझ में नहीं आई होती है, तो थोड़ी बहुत समझ में आई होती है, थोड़ी बात समझ में नहीं आई होती है, अब जब वो तीसरे बंदों को जाके बताते हैं ना तो वो फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर मिक्स करके फिर आगे बता देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बात जो शुरू में स्टार्ट हुई होती है ना वो कुछ और होती है, और आगे चलते चलते जो है वो बहुत ज्यादा ना चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से याजूज माजूज के बारे में भी बहुत सारी बातें मशहूर हैं, बिकॉज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है भाई, कैसे लोग होंगे, क्या करते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे, कैसे सोते होंगे, तो अब एवरीवन इज सो इंटरेस्टेड एंड सो एक्साइटेड अबाउट नोइंग मोर अबाउट याजूज माजूज, ठीक है। तो इस तरह से ना फिर कहानियां बनना शुरू हो जाती हैं, और फिर कहानियां जो होती हैं उनके अंदर झूठ ज्यादा होता है और सच कम होता है। तो यही कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारी स्टोरीज मशहूर हुई हैं तो ये ज्यादातर सही स्टोरीज नहीं है। तो इस वजह से जिस चीज के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं 100% यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट इज व्हाट इज इन कुरान एंड हदीस, ठीक है, क्योंकि कुरान और हदीस जो है ना उसके अंदर झूठ नहीं है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट, यानी ये है कि भाई ठीक है आपको जरा समझना पड़ता है, जरा सोचना पड़ता है कि कुरान एक्चुअली क्या कह रहा है, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, लेकिन जो फरमाया है वो झूठ नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल नैरेटिव्स हैं और जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, तो हमने यहाँ पर ना कुछ प्रोवाइड कर दिया है, लोगों के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करी हमने, लेकिन बेसिकली कुरान और हदीस ही जो है ना वही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, तो उसी को फिर हम लेकर के चलेंगे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे जी, 657, ठीक है, बट नाउ वी आर ऑन 658, द नेक्स्ट पेज। तो उस पेज के ऊपर है टाइटल हदीस रिपोर्ट्स अबाउट याजूज एंड माजूज, ठीक है, हदीस में याजूज माजूज के बारे में क्या है। तो कहते हैं कि एटलीस्ट दिस मच स्टैंड्स डाउटलेसली प्रूव फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना दैट याजूज माजूज आर नेशनल एंटिटीज फ्रॉम अमंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। कुरान और सुन्नत से एक बात साबित है कि याजूज माजूज जिन नहीं है, ठीक है, ये कोई और मखलूक नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, ठीक है। दे आर द प्रोजेनी ऑफ सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, वेरी मच लाइक देम बिकॉज सो सेज द कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ऑफ द कुरान वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन, व्हिच मींस दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स सर्वाइविंग ऑन द अर्थ आफ्टर द फ्लड During the time of Sayyidina Nuh alayhi salam shall all be from his progeny, meaning from his children. ठीक है, तो नूह अलैहि सलाम का तूफान नूह के बारे में पता है ना कि जब फ्लड आया था काफिरों के ऊपर और सारे काफिर जो है मर गए थे, और नूह अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि कश्ती बनाओ, तो जितने ईमान वाले थोड़े से उस वक्त थे ना वो सारे के सारे नूह अलैहि सलाम के साथ उस कश्ती पे सवार हो गए थे, ठीक है ना, और कुछ उन्होंने एनिमल्स वगैरह को भी रख लिया था। तो जो ह्यूमन बीइंग्स थे उस वक्त दुनिया में, जितने ह्यूमन बीइंग्स थे ना, वो सारे ह्यूमन बीइंग्स उस फ्लड के अंदर खत्म हो गए थे, ठीक है। तो जब वो कश्ती फिर जाकर के रुकी, फिर उसके अंदर से ये लोग उतरे, तो अब उन ह्यूमन बीइंग्स में से अपेरेंटली ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोग थे ना नूह अलैहिस्सलाम की फैमिली के अलावा जो लोग थे, उनका इंतकाल हो गया बाद में जाकर के, बूढ़े हुए होंगे, फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया होगा, लेकिन उनकी औलादें जो हैं वो नहीं हुई होंगी, ठीक है, दे डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन, तो उनकी फिर जो नस्ल है ना वो आगे नहीं चली, सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल आगे चली। यानी नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे वो उनके साथ कश्ती में सवार हो गए थे, तो उन बेटों की और बेटियों की फिर जो जो फैमिलीज थी, अब जाहिर है जो दूसरे लोग होंगे उनके साथ ही उनकी फिर शादियां वगैरह हुई होंगी, तो शादियां होकर के फिर उन बेटों की और बेटियों की औलादें हुई होंगी, ठीक है। तो सिर्फ वही आगे चली। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं ना इस वक्त, वो सारे के सारे नूह अलैहिस्सलाम की ही औलाद बनते हैं, किसी और के औलाद नहीं बनते। आदम अलैहिस्सलाम से जितने लोग थे वो स्प्रेड हुए थे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे आकर के बाकी सारे जो है वो खत्म हो गए और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की फैमिली आगे बढ़ी। जी Where were they from?
Yeah.
It's being answered right now. Abhi, exactly that's what we are going to read. तो उन्होंने कहा कि ये जो याजूज और माजूज है ना, ये भी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में से हैं। तो फरमाया कि क्या कहते हैं कि which means और हाँ, historical narratives converge on the fact that they are the progeny of Yafis, Yafis, son of Nuh. नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे जिनका नाम था याफिस। याफिस की जो फैमिली आगे चली ना, तो वो अपेरेंटली ऐसा था कि वो जो जिस हम लोग देखते हैं ना, ये जो चाइनीज फेशियल फॉर्म होती है, ठीक है, फेशियल फीचर्स, चाइनीज फेशियल फीचर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के फेशियल फीचर्स से, यूरोपियंस के फेशियल फीचर्स से, ठीक है, और अफ्रीकन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है किताबों में कि जो नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ना, किसी की शक्ल जो है वो डार्क स्किन थी, ठीक है ना, काले जैसे अफ्रीका में होते हैं, किसी की जो है वो बिल्कुल लाइट स्किन जैसे येलोइश टाइप का, रेडिश येलो स्किन थी, किसी की शक्ल जो थी वो जिस तरह चाइनीज होते हैं उस तरह की थी, ठीक है। अल्लाह ताला ने बनाया इस तरीके से, अल्लाह ताला बनाना चाहते हैं लोगों को डिफरेंट डिफरेंट शक्ल सूरत वाले, ठीक है। तो अब जो याफिस थे ना, तो उनकी जो जो चिल्ड्रन हुए वो उन्हीं की शक्ल पर थे, तो उनकी शक्ल जो थी ना वो अपेरेंटली जैसे चाइनीज लोग होते हैं, जैसे टर्क लोग होते हैं, टर्क्स राइट, मंगोल्स, मंगोलिया के रहने वाले, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, इनको आपने कभी देखा है जो तुर्क लोग कहलाते हैं, ठीक है ना, ये शक्ल सूरत में ना हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, इनकी शक्ल जो है वो चाइनीज से ज्यादा मिलती है। तो इनकी जो औलादें थी ना, अपेरेंटली ये जो टर्क्स हैं और चाइनीज हैं और जापानीज हैं, ये सारे के सारे याफिस की औलाद बनते, ठीक है। तो जो याजूज और माजूज है ना, वो इन्हीं में से एक ग्रुप था, एक कबीला था इनका, ठीक है, जो कि याजूज और माजूज के नाम से बाद में मशहूर हो गया। तो ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस के फिर बेटे थे, which is supported by a weak hadith as well, ठीक है, यानी हिस्टोरिकल नरेशन भी है कि याफिस के बेटे थे और एक ज़ईफ हदीस भी इस बात पर है कि याफिस के बेटे थे। रिगार्डिंग द रेस्ट ऑफ देयर एंटीसिडेंट्स, द हदीस ऑफ Sayyidina An-Nawwas ibn Samman is most detailed and sound in authority. तो एक सहाबी थे Sayyidina Nawwas رضی اللہ تعالیٰ عنہ, तो उन्होंने जो हदीस नरेट करी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, वो हमने अभी पढ़नी है। That hadith has been reported in the Sahih of Muslim and in all books of hadith recognized for their authenticity. यानी जो सही बुक्स ऑफ हदीस है ना, उनके अंदर ये वाली हदीस मौजूद है। याजूज एंड माजूज दुनिया में हैं अभी, जी हाँ बिल्कुल हैं, उन्होंने तो आके सारा बेड़ा गर्क करना है बाद में, तो वो हैं तभी तो करना है उन्होंने, आगे आप सुनेंगे ना तो आपको सब पता लगेगा इंशाल्लाह। अरे इट हैज बीन नरेटेड इन सही मुस्लिम एंड ऑल बुक्स ऑफ हदीस। दिस हदीस कैरीज डिटेल्ड डिटेल्स कंसर्निंग द अपीयरेंस ऑफ द दज्जाल, द कमिंग ऑफ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एंड देन the appearance of Yajuj Majuj. A translation of this entire hadith is being given below. ठीक है ना, अब ये हदीस हमने पढ़नी है, डिटेल हदीस है, तो इसको आप लोग बुक से फॉलो करें। हाँ, ये लोग काफिर थे, अभी भी हैं ये काफिर ही, ठीक है। अभी आप सुने इस हदीस को, पेज 658 पे, पैराग्राफ नंबर 3rd या 2nd। सैयदना अन-नवास इब्न सम्मान सेज that one morning the Holy Prophet ﷺ mentioned Dajjal, Antichrist. And while doing that, he said a few things which showed the low and negative aspect of his profile, such as his being one-eyed. ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एक दिन नबी ﷺ ने दज्जाल के बारे में हमें कुछ बातें बताई, और वो ऐसी, यानी इसके बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें थी जैसे कि वो एक आंख वाला होगा, उसकी दूसरी आंख जो होगी ना वो अजीब व गरीब तरीके से जैसे पिचकी भी होती है ना, आप किसी बॉल को अगर प्लास्टिक की बॉल होती है ना उनको अगर आप प्रेस करते हैं तो वो पिचक जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारे आईज के जो जो बॉल्स हैं, आई बॉल्स हैं, तो जैसे कि ना आप उसको अपने थंब से पुश कर देना तो वो पिचक जाएगी ना जिस तरीके से, तो उसकी आंख ऐसी है जैसे कोई प्लास्टिक की चीज है उसको पिचका दिया हो आपने, स्क्वाश्ड एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में हमें बताई। देन ही ऑल्सो सेड अ फ्यू थिंग्स अबाउट हिम टू द इफेक्ट दैट हिज इमर्जेंस वॉज अ मैटर ऑफ ओमिनस ट्रायल सच एज पैराडाइज एंड हेल बीइंग विद हिम एंड अदर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एस्पेक्ट्स ऑफ हिज पर्सोना। यानी और भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई कि भाई बहुत ही ज्यादा ना आजमाइश का वक्त होगा, परेशानी होगी, और वो दज्जाल ऐसा होगा कि उसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे हाथ में जहन्नम होगी, या एक साइड पे जन्नत होगी दूसरे साइड पे जहन्नम होगी। ठीक है, और जो चीज जन्नत लोग समझेंगे वो जन्नत नहीं होगी बल्कि जहन्नम होगी, और जिसको वो लोग जहन्नम समझेंगे लोग वो एक्चुअली जन्नत होगी। तो अब ये तो बड़ी खतरनाक बातें हैं कि ऐसा ऐसा वो करेगा तो लोग हम क्या करेंगे। ठीक है, तो अब इसको सुन करके ना लोग बहुत परेशान हो गए। His narration gripped us with such fear as if the Dajjal was lurking somewhere in the nearby grooves of the date palms. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पिक्चर खींची दज्जाल के बारे में कि सहाबा बहुत ज्यादा डर गए और ऐसे लगना लगा उनको कि जैसे दज्जाल जो है ना वो कहीं छुपा बैठा हुआ है, जैसे आपको जरा जिन्नों की कहानियां वगैरह सुनाए, ठीक है, भूतों की कहानियां जिन्नों के बारे में, तो लगता है ना फिर डर, उसके बाद फिर नींद नहीं आती और फिर जो है वो कहते हैं कि भाई नहीं अम्मी के साथ जाके सोना है, अब्बू के साथ जाके सोना है। तो क्यों? इसलिए कि कहानी ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि बस कहीं बराबर में जिन मौजूद है, फिर वो होता है कि हल्का सा भी एक आवाज आए वो जिन आ गया होगा, है ना, होता है बता दा। ठीक है, फिर वो सब कहते हैं कि जी हाँ। तो बस दज्जाल के बारे में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई तो लोग यही समझने लगे कि दज्जाल बस यहीं कहीं छुपा बैठा होगा और अभी आने वाला ही है। ठीक है, तो व्हेन वी प्रेजेंटेड आवरसेल्व्स बिफोर हिम इन द इवनिंग, ये बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मॉर्निंग में बताई थी, तो जब शाम को फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो इन सहाबा ने ना उनसे कहा, यानी उनके सामने जब गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शक्लें देख करके अंदाजा लगा लिया कि ये लोग बड़े डरे हुए। ठीक है, तो ही रेड आवर कंफ्यूज्ड इनर कंडीशन एंड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या हो गया तुम लोगों को भाई, इतने खौफजदा क्यों नजर आ रहे हो। तो वी सबमिटेड, तो हमने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दिया कि भाई यू टॉक्ड अबाउट दज्जाल इन द मॉर्निंग of things you said about him some seem to belittle the matter of his emergence while you also said other things which seem to highlight his matter to proportions of a great trial to the extent that we thought he was present close to us in the grooves of the date palms. ठीक है, तो आपने जो हमें इतनी सारी बातें दज्जाल के बारे में बताई ना, तो चले कुछ बातों में तो आप इस तरह कह रहे थे कि ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है, लेकिन साथ साथ आपने कुछ ऐसी भी बातें बताई कि जो के बहुत ही ज्यादा यानी ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन वाली बातें नहीं कि दज्जाल आएगा तो ये हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, तो अब हमें जो है ना बहुत डर लगना शुरू हो गया, हम तो समझ रहे हैं कि वो यहाँ छुपा बैठा हुआ है जैसे। तो देन ही सेड, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नॉट जस्ट द दज्जाल, देयर आर अदर ट्रायल्स आई फियर मे अफ्लिक्ट यू मोर। ठीक है, दज्जाल का खाली मसला नहीं है, मैं तो तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूं कि कुछ और ट्रायल्स होंगे जो कि दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक होंगे, तो मैं उनके बारे में ज्यादा फिक्रमंद हूं तुम्हारे लिए। दैट इज द ट्रायल ऑफ दज्जाल इज नॉट एज ग्रेट एज यू हैव टेकन इट टू बी। ठीक है, यानी जितना तुम समझ रहे हो ना दज्जाल का फितना जो है वो उस तरह नहीं होगा। अब ये क्या मतलब है, हालांकि दज्जाल का फितना दूसरे हदीसों से हमें पता लगता है कि ये सबसे बड़ा फितना होगा। ठीक है, तो अब इसको समझने की जरूरत है। दिस इज द थिंग आई वाज टेलिंग यू कि हदीसें जो होती हैं ना वो सच्ची होती हैं लेकिन उनको समझना पड़ता है, बगैर समझे वो हदीसें समझ में नहीं आती। कि भाई एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर दज्जाल से बड़ा कभी फितना आया ही नहीं और हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है। ठीक है ना, तो भाई दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना बना। अब यहां पर कह रहे हैं कि दूसरे फितने इससे भी ज्यादा बड़े फितने, तो अब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना, ये तो मिसमैच हो गया ना कि एक तरफ कुछ कह रहे हैं एक तरफ कुछ कह रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई यू नीड हेल्प ऑफ उलमा टू अंडरस्टैंड हदीस। आप खुद से पढ़ेंगे, इधर से कुछ हदीस पढ़ ली, इधर से कुछ हदीस पढ़ ली, यू विल बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो इस वजह से अभी हम इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इफ ही अपीयर्स एंड आई एम अमंग यू, मैं मौजूद हूं तुम्हारे दरमियान और अभी ही अगर वो निकल आया दज्जाल, خروج دجال, ٹھیک ہے, خروج دجال نکل آیا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہی از دیئر, ٹھیک ہے نا, ہی از آلریڈی دیئر ہڈن سم ویئر, ٹھیک ہے نا, بس اس کو نکلنا ہے, اس کو پیدا نہیں ہونا, ٹھیک ہے نا. اف ہی از بورن وائل آئی ایم سٹل ود یو, یہ نہیں کہا, بلکہ اف ہی اپیئرز وائل آئی ایم سٹل ود یو, ٹھیک ہے. تو اف ہی اپیئرز اینڈ آئی ایم امنگ یو, آئی شل کنفرنٹ ہم پرسنلی وداؤٹ یو, ٹھیک ہے نا, میں مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑے گی, میں اکیلے ہی اس سے نمٹ لوں گا, ٹھیک ہے, میں اسے لڑ لوں گا اور ختم. اینڈ اف ہی اپیئرز اینڈ آئی ایم ناٹ امنگ یو, یعنی میں اس دنیا سے جا چکا ہوں اس وقت تک, ایوری ون ول ٹرائی ٹو کنفرنٹ ہم ان ٹرمز آف ہز کریج. تو جس کے پاس جتنا بہادری ہوگی, کریج ہوگا, وہ اپنے حساب سے پھر اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے, کنفرنٹ کرنے کی. کس کی جیسے؟ آرمی کے جیسے نہیں, پرسنلی, ٹھیک ہے. از دجال اے جن؟ نہیں, ابھی نہیں, دجال جن, اچھا, آرمی کی طرح نہیں, ایک منٹ, آپ کیا کہہ رہے ہیں, آرمی کے جیسے فائٹ کریں گے؟ نہیں, اٹس لائک مور لائک انڈیویجولی, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم اس کے بارے میں بات کرنا ہے, اٹس ناٹ کلیئر کہ دجال سے کیسے کنفرنٹ کرنا ہے اور کیا فتنہ ہے دجال کا, ٹھیک ہے. تو جو کوشچن یہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ he's a weird human, dajjal is a jinn or is he a weird human or is he a human, theek hai. to ab iske bare mein na ek narration jo humne kahin pe padhi hai wo ye hai ki dajjal is half human half jinn, theek hai, yani his father was a human being or mother was a jinn, ya mother was a human being father was a jinn, to is tarah ki baat bhi kahin likhi hui hai, theek hai. لیکن اس کی جو جو آؤٹ ورڈ اپیئرنس جو ایک صحابی نے دیکھی تھی, ایک صحابی کی دجال سے ملاقات ہوئی تھی اور اس نے آ کر کے انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائی تھیں جو دجال سے ان کی ہوئی تھیں, تو انہوں نے جس طرح کا ڈسکرائب کیا تھا نا, تو وہ یعنی اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ ہے ہیومن بینگ ہی, ٹھیک ہے, یہ ہیومن بینگ ہے, یعنی مٹی سے بنا ہوا جو ہیومن بینگ ہوتا ہے نا, گوشت سے اور ہڈی سے, اور ٹھیک ہے, ہم لوگ کس چیز سے بنے ہوئے, مٹی سے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ بنایا نا, لیکن اس کے بعد جب روح پھونک دی تو گوشت اور ٹیشوز اینڈ ہڈی اینڈ یہ ساری چیزیں ہو گئی نا, تو یہ بھی ایک ایسا ہی ہے. تو جن کی کمپوزیشن تو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, تو ہی از اے ہیومن بینگ اپیرنٹلی, ٹھیک ہے. اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری تفصیلات بتائی بھی ہیں, تو وہ بھی اب پڑھ لیتے ہیں. تو آگے کہا کہ ایوری ون ول ٹرائی ٹو کنفرنٹ ہم ان ٹرمز آف ہز کریج, اینڈ اللہ از ان مائی ایبسنس the guardian and protector of all Muslims. ٹھیک ہے, کہ بھائی جب میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو اللہ تو ہوگا نا, ٹھیک ہے, اللہ تو از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, رائٹ, تو اللہ ول پروٹیکٹ مسلمس, اللہ ول بی دا گارجین اینڈ پروٹیکٹر آف مسلمس, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ a lot of times we tend to forget this fact that Allah is there to take care of things and take care of us, okay. Why do we forget? Because shaitan exactly yahi karwana chahta hai ki wo bhula de hame ye baat ke Allah bhi hai, theek hai na. Ab wo na mukhtalif tareeqon se bhulata hai, ek tareeqe se wo uska jo bhulane ka ek tareeqa hai wo kya hai ki wo hame fun mein laga deta hai, fun, fun wala fun, theek hai, like games, playing with your toys for children, ٹھیک ہے, ویڈیو گیمس کے اندر لگا دیا, ابھی ٹھہر جائیں دجال کا, ابھی ہم دوسری بات کریں کہ اللہ کو ہم کیسے کیسے بھولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو ہم ٹوائز کے اندر لگ کر کے بچے بھول جاتے ہیں, تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو ویڈیو گیمس کے اندر لگ جاتے ہیں, تو پھر ویڈیو گیم جو ہے وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ ویڈیو گیم کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے, امی ابو کو کہتے ہیں نہیں کھیلو تو پھر وہ غصہ ہوتا ہے امی ابو کے اوپر. بہرحال ویڈیو گیمس, ٹھیک ہے, تھوڑے اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ موویز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, ڈراماز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, میوزک سننا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, میوزک, ڈراماز, گیمز, فٹ بال, باسکٹ بال, کرکٹ, رائٹ, آل آف دیز تھنگ جس میں آپ بہت زیادہ انوالو ہو جائیں, تھوڑا کھیلنا از ناٹ اے پرابلم, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ڈو سم فزیکل ایکٹیویٹی. تو شام کے وقت آپ ہاف این آور, ون آور, ایون ون اینڈ ہاف آور یو شوڈ بی پلیئنگ سم تھنگ, باسکٹ بال, کرکٹ اور فٹ بال. لیکن always thinking about it, صبح بھی کرکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, رات کو بھی کرکٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کرکٹ کی کامنٹری سن رہے ہیں, کرکٹ کے اندر کون سا والا گیم ہو رہا ہے, کون جیت گیا, کس پہ اتنے رن بنائے, اس نے اتنے رن بنائے, دس از ناٹ رائٹ, ठीक है। तो अब इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होकर के ना यू फॉरगेट अल्लाह। तो दिस इज वन वे दैट पीपल फॉरगेट अल्लाह। जब आप पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने की वजह से आप अल्लाह को भूलना तो जरूरी नहीं होता ना। आप इस तरह की चीजों के अंदर नहीं, वो और बात है, वो आप थोड़े और बड़े होंगे फिर आपको समझ आएंगे भी है, ठीक है। तो एक ये एक तरीका है। एक और तरीका है भी अल्लाह को भूलने का, वो क्या तरीका है भाई, किसी को पता है? बच्चों से वैसे आई डोंट एक्सपेक्ट एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और तरीका वो ये है कि जब आप थोड़े से रिलीजियस हो जाते हैं ना, ठीक है, थोड़े से रिलीजियस हो जाते हैं, ठीक है ना, और आपने जो है वो कुछ सुन्नत वन्नत के बारे में चीज़ें पढ़ ली होती हैं, ठीक है, सुन्नत वन्नत तो थोड़ी बहुत आपने पढ़ ली होती हैं चीज़ें, ठीक है, तो आपको फिर ना एक बात ये समझ में आनी शुरू हो जाती है कि भाई सुन्नत ये है कि यू हैव टू डू एन एफर्ट, ठीक है, you have to use the means, you have to be working and making an effort, aur aapko bahut mehnat karni chahiye, this is sunnat, theek hai na। to ab jab ye ek understanding of sunnat aa jati hai na, ab ye to religious baat hai na ki bhai sunnat ke upar amal karna hota hai, hai na। to ab shaitan kya karta hai, ab shaitan ko pata hota hai ki bhai ab ye sahab jo hai na ye music to nahi sunenge, theek hai, kyunki music jo hai usse to unhone toba kar li hai, to ab deendar ban gaye, maulvi sahab ban gaye, ठीक है ना। तो अब इन्होंने म्यूजिक नहीं सुननी, अब इन्होंने मूवीज नहीं देखनी, अब तो इनको फिक्र पड़ गई है सुन्नत की, अब शैतान आपको छोड़ देगा उसके बाद? नहीं, शैतान अभी भी नहीं छोड़ता। तो अब शैतान क्या करता है, वो कहता है कि हाँ देखो मेकिंग एन एफर्ट इज अ सुन्ना, राइट, सो अब नाउ यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, ठीक है ना, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू एवरीथिंग बिकॉज दैट इज सुन्नत, राइट, you have to make sure that you cover all holes, all patches ko aap cover kare, har possibility ka aap khayal kare, because there is sunnat, theek hai na। ab banda jo hai ye maulvi sahab jo hain daadi wale topi wale, right, ab ye maulvi sahab na hai na, ab sunnat samajh karke he tries to do everything on his own, theek hai, he wants to do everything on his own thinking that this is sunnat, theek hai na, lekin actually ho kya raha hota hai iske sath, ho ye raha hota hai कि actually he is forgetting that Allah is the one who does everything, we are not supposed to do everything, हमें ये सारे काम नहीं करने होते हैं, हमें सिर्फ वो काम करना होता है जिसका हमें हुक्म दिया जा रहा है, जिसके कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से कमांड आ रही है, हुक्म आ रहा है, हमने वो काम करना है, हमने सारे काम नहीं करने हैं, we have to leave things upon Allah as well, right, Allah is the one who's going to actually do the rest, everything actually Allah ने करना है, हमने तो सिर्फ वो करना है जिसका कि हमें responsible बनाया गया है, ठीक है ना। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान जो है ना इसको कहता है कि तुमने सारे काम करने हैं, अब सारे काम करने में ना शैतान फिर बीच में से जो असल काम करने का होता है ना उसको साइड में से निकाल देता है, राइट, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, असल जो तुम्हें करना था उसको तो बीच में से साइड पे कर दिया, भुला दिया उस बात को, राइट। अभी थे जाना, आपको सारी बातें एक साथ समझ में नहीं आ सकती हैं, यू जस्ट हैव टू फॉर सम टाइम, यू जस्ट हैव टू लिसन अ लिटिल बिट, ठीक है, दैट्स वेरी गुड, सो वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। तो अभी आप ठहरे, जिस चीज का आपके जवाब हमको देना होगा तो हम दे देंगे आपके जवाब, ठीक है, फॉर द रेस्ट आई विल टेल यू टू वेट, ठीक है। तो इस वजह से ना शैतान फिर इस तरीके से भी अल्लाह ताला को भुला देता है, ठीक है, और ये कहता है कि नहीं तुम तो सुन्नत पे अमल कर रहे हो, और तो इस वजह से ना नबी अलैहि सलाम यहाँ पर हमें ये याद दिला रहे हैं कि डोंट फॉरगेट दैट अल्लाह विल स्टिल बी देयर, आई विल नॉट बी देयर विद यू बट अल्लाह विल बी देयर विद यू, ठीक है ना। डोंट, अब क्या है, हम जिस जमाने से गुजर रहे हैं कितनी चीज़ें खराब हो गई हैं भाई, बहुत गुनाह हो गया है, बहुत जो है वो नेकियाँ जो है वो अब कम हो गई हैं, लोग जो है वो नेक नहीं रहे, नेक लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और नेक बनना बड़ा आसान है, सब कुछ खराब हो गया, ठीक है ना। मदीना मुनव्वरा जाएं तो नबी अलैहि सलाम का घर वो भी ख़त्म हो गया, सहाबा के घर वो भी ख़त्म हो गए, हर चीज़ जो है वो मॉडर्न बन गई है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे शेख मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद नक़शबंदी, वो एक बड़ी मजे की बात कहते हैं मदीना मुनव्वरा में एवरीथिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड, हर चीज रिप्लेस हो चुकी है, पुराने जमाने की कोई भी चीज बाकी नहीं रही, ठीक है ना, लेकिन ओहद पहाड़ स्टिल द सेम, राइट, ये वही ओहद पहाड़ है कि जिस ओहद पहाड़ के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम चले थे, राइट, उसी के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम बैठे थे उसी के ऊपर आप ने जो काम किए होंगे ये वही बहुत पार है, दैट हैज नॉट बीन रिप्लेस्ड, ठीक है ना। बाकी तो सारे रास्ते चेंज हो चुके हैं ना, आप सल्लम जिन रास्तों पे चलते थे, जिन घरों के अंदर रहते थे, राइट, सब कुछ तो चेंज हो चुका है, नथिंग एल्स इज देयर। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये तो बहुत पहाड़ के बारे में एक बात उन्होंने फरमाई, लेकिन वी शुड रिमेम्बर कि एवरीथिंग हैज चेंज, थिंग्स हैव गॉन डाउन, लेकिन क्या अल्लाह ताला की जो पावर है, अल्लाह ताला की जो माइट है, उसके अंदर कोई कमी आई है? अल्लाह ताला की जो जो कंट्रोल है उसमें भी कोई कमी आ गई कि 1400 साल गुजर गए, नाउज़ बिल्ला अल्लाह इज नॉट एज पावरफुल एज ही यूज्ड टू बी, राइट, इज दैट ट्रू? कि 1400 साल पहले तो अल्लाह ताला बहुत पावरफुल थे, नाउज़ बिल्ला अब जो अल्लाह ताला इज बिकम वीक एंड ओल्ड, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। अल्लाह ताला तो उतने ही पावरफुल है अब भी जितने पावरफुल पहले थे, राइट, लेकिन शैतान टेंड्स टू मेक अस फॉरगेट दैट, कहते नहीं जी 1400 साल गुजर गए, नबी सल्लम का जमाना इतना गुजर गया, अब एज इफ अल्लाह इज नॉट देयर टू हेल्प अस एनीमोर, दैट्स नॉट ट्रू, अल्लाह इज स्टिल देयर। तो वही नबी सल्लम फरमा रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। द मुस्लिम्स, इस एक जुमले के अंदर वन थिंग टू बी रिमेम्बर्ड, द मुस्लिम्स, अल्लाह इज द गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ ऑल मुस्लिम्स। द पॉइंट हियर टू नोट इज we have to remain Muslims, right? Because Allah is the guardian and protector of Muslims. Agar hum Muslim hi nahi rahenge, to ye guardian aur protectorship jo hai Allah Taala ki taraf se nahi milegi. To hamara karne ka kaam ye hai ki hum apne iman par mehnat kare, apne iman ko preserve kare, theek hai na? Hamara iman preserve hoga to Allah Taala na ye kafiron ko hame maarne nahi denge, theek hai? क्या लिख रही हैं कि does it mean that shaitan makes us forget to do farz and make us busy in doing nawafil more than we can balance? That is one part of it. Yes, that farz जो है उससे शैतान बुला देते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी समझाया है, और नवाफिल के अंदर लगा देते हैं। लेकिन अब हम जब फर्ज और नवाफिल की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ नमाजें आती हैं, ठीक है, कि बस फर्ज नमाजों में लगा देता है, फर्ज नमाजों से हटा देता है और नफिल नमाजों में लगा देता है। नहीं, इट्स नॉट जस्ट नमाजें, ठीक है, बल्कि हर काम के अंदर कुछ बात फर्ज होती है जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कुछ चीज़ें जो है वो हम अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं, वो नवाफिल कहलाती है हर चीज़ के अंदर। तो शैतान ये कहता है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे हमें हटा देता है और जो नवाफिल होती हैं उनके अंदर लगा देता है। खैर, ये आपके सारी क्वेश्चन का जवाब था। तो असल टॉपिक जो है ना वो जो हदीस है, तो उसमें आगे जो है ना नबी अलैहिस्सलाम दज्जाल के बारे में हमें कुछ साइंस बता रहे हैं दज्जाल की ना। तो उससे पहले लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग, विच इज के दज्जाल का फितना क्या सबसे बड़ा फितना है या सबसे बड़ा फितना नहीं है, ठीक है, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? अभी जो हमने पढ़ा तो उससे तो लग रहा है कि नहीं, इतना बड़ा फितना नहीं है, और दूसरे हदीसों के अंदर होता है कि ये सबसे बड़ा फितना है। तो फिर हाउ डू यू रिकंसाइल इन दोनों के दरमियान, कैसे आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? क्लासेस में कोई जवाब दे सकते हैं? माशाल्लाह बड़े बड़े बच्चे भी हैं, तो अगर किसी के जहन में कोई जवाब आता हो उसका, है क्या है फितना है? अच्छा, तो फिर दूसरी हदीसों का क्या मतलब होगा जिसमें कि यानी एक्चुअली ये जो हदीस यहाँ लिखी हुई है इसमें जो लिखा हुआ है कि नहीं इससे भी बड़े फितने हैं, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सिर्फ अल्लाह को पता है ये फितना है कि नहीं है। सिर्फ अल्लाह को पता है, ये जो पॉइंट होता है ना ये उस वक्त कहा जाता है कि जबकि हमें उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं बताया, ठीक है, तो दज्जाल के बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत कुछ बताया, ठीक है, तो आवर रिस्पॉन्स विल बी के दिस कुड बी द एक्सप्लेनेशन, बट अल्लाह नोज बेस्ट, ठीक है, नॉट दैट सिर्फ अल्लाह को पता, बट अल्लाह नोज बेस्ट। हमने जो इसको समझने की कोशिश करी है तो वो हमारी समझ के मुताबिक है, लेकिन जो असल नॉलेज है वो अल्लाह ही के पास है, ठीक है, अल्लाहु आलम। जी, हाँ सही,
जोर से बोल रहा हूँ, क्योंकि क्यों
ज्यादा हदीसों में पता चलता है। चलिए ये भी एक अच्छा जवाब है कि भाई ज्यादा हदीसों में है कि हाँ बड़ा फितना है, तो इस हदीस में अगर ये नहीं है तो फिर हम ज्यादा हदीसों को प्रेफर करेंगे इस हदीस के मुकाबले में। ठीक है, दैट कुड बी अ गुड आंसर, लेकिन अपेरेंटली दिस इज बिकॉज़ याजूज वाजूज कम आफ्टर दैट दाल, झूठ को सच से, सच को झूठ से, इन सम वेज इट इज बिगर एंड इन सम वेज इट इज नॉट। हाँ, दैट्स अ गुड आंसर, इन सम वेज इट इज बिगर एंड इन सम वेज इट इज नॉट बिगर। ठीक है, तो अब ना एक बात जो सहाबा कराम की जो यहाँ पे था ना कैफियत जो उनकी हुई थी कि उनको खौफ आ रहा था, डर लग रहा था, ठीक है, तो ये जो खौफ और जो डर लग रहा था ना, तो ये एक फिजिकल खौफ और डर लग रहा था, ठीक है ना, फिजिकल कि दज्जाल जो है वो यहाँ पर कहीं छुपा हुआ होगा, वो आएगा और वो हमें मारना शुरू कर देगा, ठीक है, और हमें जो है ना उस हमें उससे फाइट करना पड़ेगा और हमें उससे जो है वो लड़ना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा यानी दज्जाल के आने के वक्त जो है ना बहुत ज्यादा जो है वो लड़ाइयां वगैरह होंगी और हम उससे कैसे लड़ेंगे, क्योंकि वो तो बड़ा पावरफुल लगता है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये समझाया कि दज्जाल का जो फितना है ना वो इस फॉर्म का फितना नहीं है जिस फॉर्म का फितना तुम समझ रहे हो, कि दज्जाल के एक पास एक बहुत बड़ी आर्मी होगी, ही विल बी वेरी पावरफुल और वो आएगा और तुम लोगों को कत्ल करना शुरू कर देगा, ठीक है, नहीं, दज्जाल का फितना ये वाला फितना नहीं है। तो तुम जो समझ रहे हो ना जिसकी वजह से तुम्हें खौफ हो रहा है, तुम इसकी इसका खौफ ना करो, ठीक है ना, अपनी जानों की फिक्र ना करो तुम, क्योंकि दज्जाल ने आकर के तुम्हें कत्ल नहीं करना शुरू कर देना। तो दज्जाल का फितना ये वाला फितना नहीं है, बल्कि इससे बड़े फितने भी मौजूद हैं, यानी जान के जो फितने हैं ना कि जिसमें के लोग तुम्हें मारेंगे आकर के, वो दज्जाल वाला फितना नहीं है, वो दूसरे फितने हैं जिनमें के लोग तुम्हें आकर के मारेंगे, फिजिकली तुम्हें स्लॉटर करेंगे, कत्ल करेंगे, ठीक है, जैसे कि याजूज माजूज, ठीक है ना, वो फिजिकली आकर के मारेंगे। तो दज्जाल का फितना फिजिकल फितना नहीं है, फिर वो कौन सा फितना है, वो फितना जो है ईमान का फितना है, ठीक है, ईमान का फितना है, और ईमान के फितने में जाने नहीं जाती, राइट, आप स्लॉटर नहीं हो रहे होते, यू आर एक्चुअली वेरी सेफ एंड साउंड, यू आर लिविंग अ गुड इनफ लाइफ, ठीक है ना, बट योर ईमान इज एट स्टेक, ठीक है। तो ईमान के हिसाब से अगर आप देखें तो दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना है, इतना बड़ा फितना कभी भी दुनिया के अंदर नहीं आया, ठीक है, लेकिन अगर आप फिजिकल फाइटिंग के हिसाब से देखें तो दज्जाल का फितना कोई इतना बड़ा फितना नहीं है, क्योंकि वहां पर फिजिकल फाइटिंग वाला मसला नहीं है, क्यों, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, उससे तो मैं अकेले ही निमट लूंगा, ठीक है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ह्यूमन बीइंग थे ना, ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल थे दूसरों के मुकाबले में, लेकिन अकेले ही वाज एबल टू फाइट हिम, और हदीस में क्या आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अकेले ही दज्जाल को मार देंगे, तो आपको कोई आर्मी शार्मी की जरूरत नहीं है, आपको एटम बम बनाने की जरूरत नहीं है दज्जाल से फाइट करने के लिए, ठीक है, कोई आपको एयरक्राफ्ट्स की और इन सब चीजों की जरूरत नहीं है दज्जाल से फाइट करने के लिए, इट इज नॉट ए फिजिकल फितना, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये फिर बात समझ में आ जाती है कि दज्जाल का फितना बड़ा ईमान के हिसाब से है, और अगर आप फाइटिंग के हिसाब से देखें, फिजिकल फाइटिंग के हिसाब से, दज्जाल का फितना इतना बड़ा नहीं है। तो अल्लाह ताला तुम्हारे जानों की हिफाजत कर लेगा, डोंट वरी अबाउट इट टू मच, हिंदू मार देंगे या क्रिश्चियन मार देंगे, ये मार देंगे, वो मार देंगे, इसकी तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम मुसलमान बन करके रहो बस, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम में तो पढ़ते हैं कि यू विल रिकॉग्नाइज हिम एज ए यंग मैन, यानी वो एक नौजवान होगा, यंग होगा, क्या मतलब भाई, वो तो हजारों साल से जिंदा है, ठीक है, तो अल्लाह ताला का उसके साथ मामला ऐसा होगा कि ही विल कंटिन्यू टू बी यंग, वो बूढ़ा नहीं होगा, ठीक है, तो ही विल बी अ यंग मैन, हार्ड कर्ली हेयर, ठीक है, यानी उसके कर्ली हेयर होंगे, मुड़े हुए हेयर होंगे, आपकी कर्ली हेयर है, नहीं बहुत बड़ी बात, बहुत सारे लोगों के कर्ली हेयर होते हैं, खैर उसकी पहचान ही होगी, उसके भी कर्ली हेयर होंगे, वन आई प्रोट्रूडिंग अपवर्ड ब्लाइंड इन द अदर एज इन अदर नैरेटिव्स, तो एक आई जो होगी ना वो जरा उभरी हुई होगी, यानी बल्जिंग आउट, ठीक है, और दूसरी आई जो होगी वो उसकी ब्लाइंड होगी, और उसी आई के बारे में फिर और हदीसों में आए कि वो जैसे कि स्क्विश्ड होगी, पिचकी हुई होगी, एंड इफ आई कैन लाइकन हिम इन दिस अगली प्रोफाइल विद समवन, इट इज अब्दुल उज्जा इब्न अबान, एन अगली पर्सन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनू खुज़ा ड्यूरिंग द जाहिलिया, तो एक आदमी बहुत ही मशहूर गुजरा था पिछली जनरेशन में, जिसका नाम ये था इब्ने कतान, ठीक है। तो वो बड़ा ही अगली किस्म का आदमी होता था, तो उसकी जो बदसूरती थी ना वो अरब में बड़ी मशहूर थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उसकी तरह से बदसूरत होगा। इफ ए मुस्लिम फ्रॉम अमंग यू रन्स इनटू हिम, ही शुड रिसाइट द इनिशियल वर्सेस ऑफ सूरा अल कहफ अगेंस्ट हिम। जैसे कि हमने सूरा कहफ बिल्कुल इस क्लास के शुरू में हमने वो फजाइल पढ़े थे ना कि दज्जाल की हिफाजत के लिए सूरा कहफ की शुरू की 10 आयतें हदीस में आती हैं, तो वो रिसाइट करे उस दज्जाल से बचने के लिए। विच विल कीप हिम प्रोटेक्टेड फ्रॉम दज्जाल, ठीक है। यानी आयात के अंदर इतनी पावर होती है कि फिजिकल एनिमीज, जो सामने एक आदमी खड़ा हुआ है वो आपको मारने आ रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला उन आयात की बरकत से उस आदमी से भी आपकी हिफाजत कर सकते हैं, ठीक है। तो दज्जाल जैसे एनिमी से भी अल्लाह ताला सिर्फ आयात के पढ़ने की वजह से हिफाजत फरमा देंगे। दज्जाल विल इमर्ज फ्रॉम द एम्प्टी स्पेस बिटवीन सीरिया एंड इराक, क्रिएटिंग हैवॉक राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो सीरिया जो आज का कंट्री है, शाम जिसको कहते हैं, तो शाम पूरा एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको आजकल सीरिया कहते हैं, और जॉर्डन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। आजकल जो जॉर्डन मुल्क है दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सीरिया, ओरिजिनल सीरिया, और इराक जो है वो उसके ईस्ट के ऊपर पूरा एक कंट्री है। तो उनके दरमियान जो जगह होगी वो वहां पर दज्जाल कहीं ना कहीं वहां से निकलेगा, और वो फिर निकल करके जो है बड़ा फसाद वगैरह क्रिएट करेगा। किस किस्म का फसाद क्रिएट करेगा ये भी कोई ऐसा नहीं है कि वो मारना वारना शुरू कर देगा लोगों को, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ हैवॉक ही विल क्रिएट। ओ सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह, यू देन स्टे फर्म अगेंस्ट हिम। वी सेड या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड हाउ लॉन्ग विल ही टैरी ऑन द अर्थ, ठीक है। यानी वो जमीन में कितने दिन तक रहेगा, ये भी सहाबा ने पूछा। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है जो शायद हमें अगली क्लास में करनी पड़े। तो अगर किसी के पास सवाल है, जैसे कि आपके पास है, तो आप अभी पूछ लीजिए, और अगर यहाँ पे भी क्लास में सवाल है किसी के पास तो अब सवाल पूछ लें। देखिए 3 मिनट रह गए। Will he only go against the Muslims? Will Dajjal only go against the Muslims? Yes, he will only go against the Muslims. The non-Muslims of that time, they will all be behind him. They will all be with him. ठीक है, तो या यस ठीक। ये जो हिस्टोरिकल इराक और हिस्टोरिकल शाम, ठीक है, ये जो है ना इनके एग्जैक्ट जो बॉर्डर्स अभी अब नजर आते हैं ना, जो कंट्रीज ऑफ इराक एंड कंट्रीज ऑफ शाम है, तो वो तो आज से 70 इयर्स पहले या 70-80 इयर्स पहले वो बॉर्डर्स डिफाइन हुए, ठीक है। लेकिन जो हिस्टोरिकल इराक और शाम है वो अभी भी वही है जो पहले होते थे, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो शाम था ना, ट्रेडिशनल शाम, तो ये जो जॉर्डन का आज कंट्री आपको नजर आता है, जिसको आप कह रहे हैं कि बॉर्डर शिफ्ट होते रहते हैं, बॉर्डर शिफ्ट नहीं होते। यानी इट्स नॉट लाइक अ बॉर्डर शिफ्ट होने से आपकी क्या मुराद है कि कोई अर्थ की प्लेट शिफ्ट होती रहती है, कोई सिर्फ जो एग्जैक्ट बॉर्डर है तो उनके करीब आपको नहीं पता ना, लेकिन जो ओवरऑल लार्जर एरिया है तो वो तो आपको पता है ना कि इराक जो है वो हमेशा से, यानी इराक इस एरिया को कहते हैं जो कि फारस और शाम, ठीक है, फारस मीन्स ईरान, ठीक है, और शाम जो है उनके बीच का जो एरिया है, देयर इज ऑलवेज बीन इराक, ठीक है। अब उसकी बिल्कुल पेरिफेरीज के ऊपर एकदम बॉर्डर टाउन्स जो हैं, वो टाउन्स हो सकता है कि भाई ये टाउन्स जो हैं पहले वहाँ पे होते थे और अब जो है वो इराक में होते हैं, पहले फारस में होते थे अब इराक में होते हैं, इधर के बॉर्डर टाउन पहले शाम में होता था अब इराक में होता है, तो बॉर्डर टाउन्स का तो ये चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब के अंदर जो नजरान का एरिया है, नजरान एंड जीजान, राइट, ये ट्रेडिशनली इट इज पार्ट ऑफ यमन, द कंट्री ऑफ यमन, ठीक है। लेकिन फिर कुछ अरसा जब आज से 50-60 ईयर्स पहले जो सऊदी अरब बना, तो नजरान बिकेम पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ बॉर्डर टाउन के साथ हुआ ना, जो हिजाज ओवरऑल है वो तो अभी तक हिजाज ही है ना, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, हिजाज का जो एरिया है दैट्स स्टिल द सेम। तो बॉर्डर टाउन तो शिफ्ट होते रहते हैं लेकिन ओवरऑल एरिया में तब्दीली नहीं आती। हाँ उस एरिया के अंदर अपेरेंटली एक आइलैंड है,
ठीक है,
छोटा कोई कोई बड़ी सी लेक होगी, कोई रिवर होगा, उसके अंदर आइलैंड होगा, उसके अंदर हदीस से पता लगता है कि दज्जाल वहां पर है टाइड अप। Will one day literally feel like 1 year? And if it does, how will we manage the time? But Dajjal cannot enter in Madina Munawwara. हाँ ये तो manage time वाला सारा discussion है वो हमने अगली class में करनी है because this is exactly what this hadith talks about. और दूसरी बात ये कि Dajjal cannot enter Madina Munawwara. हाँ बिल्कुल ये भी hadith के अंदर आता है कि Dajjal will not be able to enter Madina Munawwara. तो बाकी जगहों पे जाएगा, मक्का मुकरमा में भी एंटर नहीं हो सकेगा और मदीना मुनव्वरा में भी एंटर नहीं हो सकेगा। ठीक है चले, अब तो ये आगे वाली बातें आप लोग पूछ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो बात हो चुकी है उसके बारे में कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास को रोक देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।